आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर, आपकी जो क्लास 8 की बुक का चैप्टर नंबर 22 है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली ये देखेंगे कि किस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में अपना एक पॉलिटिकल कंट्रोल, इकोनॉमिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश किया था, और उसके बाद जो इंडियंस थे उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक तरह से उनके ऊपर जाति की जा रही है, और इंडिया को एक तरह से ग़ुलाम बना लिया गया है ब्रिटिशर्स ने अपना। और वो जिस तरह से चाहे इंडिया के लोगों को ट्रीट कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको जेल में डाल देते थे, या फिर उनको जो अगर न्यूज़पेपर में कुछ छापना चाहे तो सरकार के खिलाफ कुछ छापने नहीं देते थे। तो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स जो चाह रहे थे वो अपनी मनमानी कर रहे थे, लेकिन जो इंडिया में लोग थे वो इस चीज़ से बिल्कुल एकदम परेशान हो चुके थे, क्योंकि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बनाते थे जिसमें सारा जो पैसा था इंडिया के जो टैक्स पेयर्स थे, या फिर जो पेजेंट्री थी, जो किसान वर्ग था, या जो भी राजा महाराजा थे, कोई भी लोग ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे, क्योंकि वो हर तरह से तानाशाह की तरह रूल कर रहे थे, और हमारे इंडियन के हर एक जो ग्रुप थे उसको वो एक नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा था। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमारा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है उसका जो शुरुआत हुई, और उसके बाद फिर, क्योंकि इंडिया हम मानते हैं कि हमारा जो देश है वो आज़ादी का हिमायती रहा है, और उन्होंने हमेशा से एक इंडिपेंडेंट सोच वाली चीज़ें रखी है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा उनको सप्रेस करे तो यहाँ के लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आती है। तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि 19th century का ये टाइम पीरियड था, और अब जो बंगाल रीजन था उसके अंदर बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी हुआ करते थे, जैसे कि हमने देखा कि जो मेन मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं बंगाल से ही शुरू हुआ, और 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जैसे फिरोज शाह मेहता, दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, और ये सब जो लीडर्स थे इम्पॉर्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए। तो अब हुआ ये रहा था कि मतलब वो ये चाहते थे कि मतलब सरकार जो है वो, जो नरम दल के लोग थे वो ये चाहते थे कि सरकार जो है वो नौकरी दे दे, वो कर कम कर दे, और हिंदुस्तान को जो बड़े पद हैं उनके ऊपर वो मौका दें, स्कूल खोलें, कानून व्यवस्था में सुधार करें, और हिंदुस्तानियों जो है उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, और हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनको हिंदुस्तानी ही रूल करें। लेकिन हुआ ये कि ब्रिटिशर्स उस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं हुए, और 1885 के अंदर फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की ही एक इम्पॉर्टेंट वो थे, जैसे कि उनका नाम था एओ ह्यूम, तो उन्होंने एक पहल की कि इंडियंस जो हैं उनको एक बड़े प्लेटफॉर्म पे एजुकेटेड इंडियंस को लेके आए, ताकि अगर वो ग्रुप होगा तो वो एक तरह से सेफ्टी वॉल थ्योरी मान के चल रहे थे इस चीज़ को, कि हम जैसे कोई भी बात होगी तो हम उन लोगों से कंसल्ट करके हम कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडियंस का भी से हो जाएगा उसके अंदर, और हमें भी अपोजिशन नहीं झेलना पड़ेगा। तो इसका नाम फिर इंटरनेशनल कांग्रेस पड़ा, और 1885 के अंदर 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई। उसके बाद फिर हुआ ये कि अब ये जो टाइम पीरियड चल रहा था 19th century, इसमें बहुत सारी फेमाइंस हो रही थी, अकाल पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था, किसानों की इस तरह से बहुत ज़्यादा दुर्दशा हो रही थी, और उसके बाद जो सरकार थी वो जो थी वो खाने पीने की चीज़ों का, जैसे गेहूं हो गया, उनका निर्यात कर रही थी, तो उनको जो हिंदुस्तानी थे उनकी कोई चिंता नहीं थी, और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे। उसके बाद फिर हमने देखा कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारी डिजीज़ भी फैल रही थी, जैसे कि प्लेग हो गया, या फिर और भी जो छोटी मोटी डिजीज़ हैं वो सब थी, हेजा, और ये जब डिजीज़ थी तो इसमें लोगों की कमर जो है और तोड़ दी, क्योंकि एक तो बीमारी और ऊपर से उनके पास वैसे ही पैसे की कमी थी, और ऊपर से खाने पीने को भी सामान नहीं था। तो उसके बाद हमने देखा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा वातावरण बन गया था जिससे हम देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ब्रिटिशर्स के अपोज में था वो। तो उसमें इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो अलग अलग एरिया से आ रहे थे, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो महाराष्ट्र में अपनी आवाज़ उठा रहे थे, उन्होंने एक केसरी नाम का न्यूज़पेपर था, तो उन्होंने मतलब न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी थी कि अन्याय के विरुद्ध कैसे हम लड़ें, किस तरह से वो करें। तो मतलब उन्होंने ये भी लिखा कि अंग्रेजी अगर भारत में आएगी तो किसी तरह से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो है वो नहीं रोल प्ले करेगी, और नेगेटिव ही उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी नौकरशाही के अन्य विनय करके हमें कुछ प्राप्त होगा नहीं तो हमें एक अपनी इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने फिर शिवाजी और इन गणपति उत्सव को मनाना शुरू किया, गणपति उत्सव, ताकि वो ये प्रूव कर सकें कि जो इंडियन रिलीजन है वो, भारतीय जो रिलीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू रिलीजन। और शिवाजी इसलिए क्योंकि वो प्रूव करना चाह रहे थे कि इंडिया में एक बहुत ही बहादुर लीडर्स रहे हैं, तो अब हमें उसी तरह की जागरूकता और उसी तरह की ब्रेवरी जो है वो लानी पड़ेगी ताकि हम उन ब्रिटिशर्स को भगा सकें। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब ये किया कि मतलब कुछ जो और लीडर्स थे उन्होंने, जो बेकार ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे या जो बहुत अपोज करते थे, तो उनके मारने की भी कोशिश की उनको। उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा। और इस चक्कर में हुआ ये कि मतलब कहीं ना कहीं जो ये लीडर्स थे उनका इम्पैक्ट ये पड़ा कि ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हो रहा था कि वो ज़्यादा दिन तक इंडिया में टिक नहीं पाएंगे। उसके बाद फिर हम 20th सेंचुरी में देखते हैं कि ये टाइम था जब 1905 के अंदर ब्रिटिशर्स ने डिक्लेयर किया कि हम जो बंगाल है उसका डिवीज़न करेंगे। मतलब उन्होंने बोला कि बंगाल जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, इसलिए उसका हमें डिवीज़न करना पड़ेगा। तो बंगाल विभाजन का जो था तो उसमें ये था कि मतलब कई सारे व्यू लोग दे रहे थे कि ब्रिटिशर्स ये बोल रहे थे कि हमें, हम उस एरिया को ढंग से रूल कर सकें इसलिए हम उसका डिवीज़न कर रहे हैं। लेकिन वो जिस तरह का डिवीज़न कर रहे थे उससे ऐसा कुछ लग नहीं रहा था, क्योंकि वो डिवीज़न कर रहे थे धर्म के आधार पर, हिंदू अलग मुस्लिम अलग। तो इससे ये साफ पता लग रहा था कि वो डिवीज़न इसलिए नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो ढंग से रूल करना चाह रहे, वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि बंगाल जो एक इम्पॉर्टेंट रिवोल्ट का सेंटर रहा है जिससे इंडियन नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई है बेसिकली, उसको वो कमज़ोर कर सकें। उसके बाद फिर वो ये बोलते थे, तो फिर इसमें भी जो नरम दल था वो ये चाह रहा था कि हम नेगोशिएट करेंगे। उसके बाद ये सब हुआ था सूरत सम्मेलन के अंदर। तो सूरत सम्मेलन मतलब कि जो कांग्रेस थी वो 1885 के अंदर हर साल अपनी एक समिट रखती थी, या फिर तो उसमें जब सूरत में हुआ था ये जब 1907 का, तो उसमें जो नरम दल थे गरम दल थे उनकी काफ़ी जिद बहस हो गई। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके अंदर भी काफ़ी डिविजन्स हो गए थे। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो एक तरह से सक्सेसफुल हो गए थे अपनी चीज़ को करने के लिए, जिस तरह का वो डिवीज़न चाह रहे थे। उसके बाद फिर 1911 के अंदर दिल्ली में जो शाही दरबार था उसका आयोजन किया गया, और उसके बाद बंगाल विभाजन को निरस्त करने की सरकार द्वारा घोषणा की गई कि हम नहीं करेंगे इसको। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अब देश की राजधानी जो है वो कलकत्ता से हटकर दिल्ली बना दी जाएगी। उसके बाद फिर अब हम देखते हैं कि किस तरह से जो मूवमेंट था, जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था, वो रूल करने लगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके अंदर कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है इसके अंदर। तो हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर वन की, जो 1914 टू 1918 में शुरू हुआ था। ब्रिटिशर्स जो थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। हमें ज़्यादा वर्ल्ड वॉर वन के बारे में नहीं देखना है, लेकिन हमें ये देखना है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इसके अंदर इन्वॉल्व थे। और जो ब्रिटिशर्स जो थे वो, उनके सैनिक जो थे वो लड़ रहे थे वहाँ पे, तो इंडियंस को बोला गया कि भाई तुम भी सपोर्ट करो। तो इंडियंस ने भी बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया था, और जो सैनिक और युद्ध सामग्री थी वो भी उपलब्ध कराई। और उसमें उनको ये लगा कि भाई हम इनकी इतनी मदद कर रहे हैं, हमने इनकी हेल्प की है, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है वो अपना ये जो एक ऋण है इसको चुकाएंगे और हमें आज़ादी शायद दे देंगे। वो आज़ादी नहीं तो कुछ लेवल तक हमें एक इंडिपेंडेंट वाला कुछ वो देंगे। लेकिन जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो 1918 तक चला था, तो हमने ये देखा कि ये लोग समाप्त होने के बाद वो लेके आ गए रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में ये था कि मतलब अगर सरकार के विरोध कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है तो बिना बताए, बिना उसकी गलती बताए सरकार जो है वो उसको जेल के अंदर बंद कर सकती है। तो ये एक तरह का ऑटोक्रेटिक नियम था, ऑटोक्रेटिक एक्ट था, जिससे लोगों की जो स्वतंत्रता थी उसमें तो और बाधा आ गई थी। तो जो इंडियंस थे वो इस बात से बहुत गुस्सा थे कि हमने तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया उनकी वॉर के अंदर, उनकी लड़ाई के अंदर, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हमें बल्कि एक रॉलेट एक्ट वाली चीज़ दे दी है जिसके अंदर से हमें जो हमारी बच्ची कुछ इंडिपेंडेंस है वो भी चली गई। तो इस चीज़ को अपोज करने के लिए जो लोग थे अमृतसर के अंदर, वहाँ पे अमृतसर पंजाब के अंदर जो जलियांवाला बाग की इंसिडेंट बहुत फेमस है, तो वो 13 अप्रैल 1919 में वहाँ पे गए और वो एक तरह से उसमें जाकर अपोज कर रहे थे गवर्नमेंट के इस डिसीजन को, इस रॉलेट एक्ट को. लेकिन फिर जनरल डायर जो है वहाँ के जो मिलिट्री के उस टाइम पे वहाँ पे जो हेड थे, उन्होंने ऑर्डर्स दिए, उन्होंने दरवाजे बंद किए सारे वहाँ के निकलने के लोगों के लिए और अटैक करा दिया. तो उसके बाद फिर हुआ ये कि लोग जो थे वो निकल नहीं पाए बाहर. और जब ये पूरी वारदात की उन्होंने, तो गोलीबारी जब शुरू की तो वहाँ पे काफ़ी लोग मारे गए और इससे पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़े विद्रोह की चीज इस्टेब्लिश हो गई थी. और अब उन्होंने ये देखा कि मतलब जो जनरल डायर था उसको भी ब्रिटिश सरकार जो है वो एक तरह से ब्लेम करने की बजाय उसको उन्होंने सम्मानित किया, ठीक है. और जब लोगों ने, भारत के लोगों ने ये देखा तो उनके अंदर एक रोष आ गया था. तो वहाँ के एक क्रांतिकारी थे उधम सिंह, तो उन्होंने क्या किया कि लंदन जाके जनरल डायर की हत्या कर दी. तो मतलब अब गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हो रहा था कि हमें लोगों की, जनता जो है मतलब उनको, उनका जो असंतोष है उसको कम करना पड़ेगा. तो उसके बाद उन्होंने मतलब 1919 के अंदर एक अधिनियम पारित किया गया जिसके अंदर प्रांतों में द्वेष शासन स्थापित किए गए. और इस अधिनियम से जनता की नाराज़गी कम होने की स्थान पर बढ़ गई. क्योंकि हुआ ये कि इन सभी अनुभवों से भारतीय लोग जो थे वो एहसास कर चुके थे कि मतलब अंग्रेज और इंडियंस अब किसी भी तरह से साथ नहीं रह सकते. क्योंकि वो कुछ पॉलिटिकल राइट दे भी रहे थे तो भी वो साफ दिख रहा था कि वो मतलब पॉलिटिकल राइट देना नहीं चाह रहे हैं, वो कोई हक देना नहीं चाह रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं. तो अब हुआ ये कि मतलब अभी तक तो सब लोग आपस में अलग अलग लड़ रहे थे, छोटे छोटे मूवमेंट हो रहे थे. लेकिन जब गांधी जी आए, तो गांधी जी जब आए तो उनकी एक लीडरशिप वाली जो गुण थे वो इतने थे कि उनके लीडरशिप में फिर हमने नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट जो है वो उसकी शुरुआत हुई, या फिर हम कहें कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया. तो उन्होंने जब ये आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम्स जो हैं उनका जो हेल्प है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए. क्योंकि अगर मुस्लिम हेल्प नहीं करेंगे तो वो एक आधा अधूरा मूवमेंट रहेगा, क्योंकि मुस्लिम भी काफ़ी लार्ज नंबर में हैं. तो उन्होंने 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन जो है उसकी शुरुआत की. और उन्होंने ये भी कहा कि देखो, वो तो खुद ही ये चाहते थे कि अहिंसा रहे, नॉन वायलेंस रहे, और इसलिए वो चाहते थे कि ये जो मूवमेंट है कि मतलब आराम से बिना किसी क्रांतिकारी तरीके से किया जाए और शांतिपूर्वक रहे. लेकिन हुआ ये कि 1922 के अंदर गोरखपुर ज़िले के चौरी चौरा इलाके में लोगों ने पुलिस चौकी के ऊपर हमला कर दिया, और हमला करके आंदोलनकारियों ने कई पुलिस वालों को मार डाला. तो जब कई पुलिस वालों को मार डाला तो गांधी जी को ये लगा कि भाई ये लोग तो इस मूवमेंट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिस तरह से मैं चाह रहा था कि ये वर्क करे उस तरीके से ये वर्क नहीं कर पा रहे. क्योंकि गांधी जी को पता था कि ब्रिटिशर्स से भिड़ोगे तो ब्रिटिशर्स के पास सैनिक, उनके पास तोपे, उनके पास बारूद, उनके पास मिलिट्री, सब कुछ बहुत ज़्यादा है. तो हम अगर उनसे डायरेक्टली वॉयलेंट तरीके से लड़ेंगे तो शायद हम ना जीत पाए. तो उसके बाद फिर हुआ ये कि हम बात करेंगे कि अभी जब ये 1922 के अंदर सब कुछ शांत हुआ, तो उसके बाद हम बात करेंगे 1928 में सैमन कमीशन. तो ये जो सैमन कमीशन था, ये देख रहा था कि इंडिया में ब्रिटिशर्स किस तरह से रूल कर रहे हैं, प्रॉपर है कि नहीं है. लेकिन इसका विद्रोह इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे ब्रिटिशर्स थे, सारा वाइट कमीशन था ये. तो उसके बाद उन्होंने बहिष्कार किया. बहिष्कार करने के बाद जब लोग सड़क पर उतरे तो फिर ब्रिटिशर्स ने वही अपनी जो दबाने वाली नीति है वो अपनाई. उसके बाद उन्होंने लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाई, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो लाल राजपूत राय थे उनको एक बहुत गंभीर चोट आई थी और उस चक्कर में उनकी मृत्यु भी हो गई बाद में. और लोगों ने फिर सोचा कि सरकार ही इस इनकी मौत की जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने ही इनको इतनी बुरी तरह मारा. उसके बाद फिर भगत सिंह जैसे जो लीडर्स थे, या भगत सिंह जैसे जो गर्म खून के जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई. उसके बाद फिर वो तो वैसे भी, क्योंकि जो भी भारत वास्तव के ऊपर कोई भी जाति होती थी तो वो तो उस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो सैंडर्स जो उनके अंग्रेजी पुलिस अधिकारी थे ब्रिटिशर्स के, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद फिर उन्होंने जो वहाँ की जो केंद्रीय की विधानसभा थी उसके अंदर भी बम से विस्फोट किया। तो ये चाह रहे थे कि किसी भी तरह ब्रिटिशर्स को हटाया जाए इंडिया से, लेकिन वो ये पावर के साथ करना चाह रहे थे, फोर्स के साथ करना चाह रहे थे। उसके बाद फिर मतलब हुआ ये कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि अब हम ज़्यादा देर तक इंडिया में नहीं रह पाएंगे, और वो इन लोगों को सप्रेस करने के लिए उनको या तो फांसी की सजा दे देते थे या फिर उनको जेल में डाल देते थे, कहीं दूर दराज इलाकों में भेज देते थे। तो उसी तरह भगत सिंह को और उनके साथियों को भी जो है गिरफ्तारी की और फांसी की सजा सुना दी गई। और उसके वजह से उनके जो और जो दोस्त थे भगत सिंह, गुरु सुखदेव, राजगुरु, तो उनकी 24 वर्ष की आयु में ही उनको फांसी दी गई। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 1931 तक 27 फरवरी को जो चंद्रशेखर आज़ाद थे उनको भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीदी प्राप्त हो गई थी। तो मतलब इम्पोर्टेंट लीडर्स जो थे वो अब मतलब लड़ते लड़ते या तो शहीद हो गए थे या फिर उनको फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह से मतलब ब्रिटिशर्स जो थे वो कहीं ना कहीं पावरफुल अपना वो दिखाना चाह रहे थे कि हम इंडिया को इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो इंडियंस थे वो भी काफ़ी डेडिकेटेड होके इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्ट ले रहे थे। तो इस चक्कर में फिर 1930 में फिर गांधी ने दोबारा से नेतृत्व किया आंदोलन का, जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें मतलब लोग ज़्यादा ले तो रहे थे भाग, लेकिन अब वो अवहेलना, अहिंसक तरीके की जो बातें थी कि भाई तुम अहिंसक तरीके अपने अपनाओगे नहीं, तो वो उन चीज़ों की अवहेलना इस मोमेंट में भी वो लोग कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद फिर हुआ ये कि उन्होंने मतलब बहुत सारे नए नए जो तरीके वो अपनाए, वो आंदोलन में भारत माता की जय या फिर ऐसे ऐसे नारे जो थे वो लगा रहे थे, ताकि ब्रिटिशर्स जो है उनको ये रियलाइज़ हो कि वो इंडिया में ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकते। उसके बाद फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे हम कि 1939 to 1942 हुआ था, तो इस टाइम ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडियंस तो हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जब ब्रिटिशर्स उस अपनी वॉर को लड़ने में बिजी थे तो उन्होंने इंडियंस ने जो है वो अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। उसके बाद उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टैब्लिश किया, और क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू हुआ तो उन्होंने ये बोला कि भाई अब ये डू और डाई की सिचुएशन है। गांधी जी ने ये बात बोली कि करो या मरो। तो उसके बाद हमने देखा कि जो गांधी जी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, उन्होंने मतलब चंपारण खेड़ा गुजरात से अपना मूवमेंट शुरू किया था, सॉल्ट सत्याग्रह किया था उन्होंने, जिसमें नमक जो हमारे देश के इम्पॉर्टेंट कमोडिटी थी जिस पे ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगा दिया था, और ये कहा था कि जो नमक है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे और ये ब्रिटिशर्स की मोनोपोली होगी, अब सिर्फ ब्रिटिशर्स ही जो है वो नमक प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो गांधी जी थे उन्होंने दांडी यात्रा की, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है नमक का जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उसको ब्रेक कर दिया गया। तो उसको हम देख के कह सकते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा था इंटरनेशनल मूवमेंट में। और फिर जब हमारे देश को आज़ादी मिली उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल कंट्रोल में अपना योगदान नहीं दिया। वो तो यही चाह रहे थे कि इंडिया का जो पार्टीशन है वो ना हो। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसओबिडेंस, क्विट इंडिया, तीन इम्पॉर्टेंट मूवमेंट का वो पार्ट रहे, और हर मोमेंट पर उन्होंने ये कहा कि नॉन वायलेंस ही हम अपनाएंगे। और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने पार्ट लिया, और एक तरह से सिंपल अपने बोल के या फिर फास्ट रख के ही उन्होंने अपनी ये पॉलिसी अपनाई थी। उसके अलावा भी और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे ये तो थे अपने नरम दल के जो ये चाहते थे कि शांतिपूर्वक तरीके से हम काम करें और शांतिपूर्वक तरीके से ब्रिटिशर्स को अपनी बात बताई जाए या फिर हम क्या चाहते हैं वो। उसके बाद हम कुछ देखते हैं कि जो लीडर्स थोड़े एक गर्म दल वाले उसमें आएंगे, तो उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जैसे सुभाष चंद्र बोस। तो उन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस थे उनका जन्म हुआ था 3 जनवरी 1897 में। तो उन्होंने जो इंडियन सिविल सर्विसेज हैं जो ब्यूरोक्रेसी की बहुत इंपॉर्टेंट सर्विसेज थी उनको पास किया था, लेकिन फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को पूरा इंडियन इंडिपेंडेंस की जो पूरी प्रक्रिया है उसके अंदर अपने आप को लगा दिया था। उसके बाद फिर दो बार उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। उसके बाद उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी जो है, या फिर हम कहें इंडियन आर्मी का एस्टेब्लिशमेंट में बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने 1943 के अंदर एक आज़ाद हिंद फौज जो है उसकी कमान संभाली और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने फिर देखा कि जो है अंग्रेजी सरकार को उनका पता लग गया है, और अब हिंदुस्तानी के सैनिक भी जो हैं वो इस जो हमारी सरकार है उसके साथ नहीं रहना चाहते। तो कहीं ना कहीं जो है वो इंडियंस भी उनका सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसको पता लग गया था। तो हुआ ये कि लास्ट में फिर हम देखते हैं कि 1945 के अंदर एक दुर्घटना में रहस्यमय तरीके से उनकी मौत हो गई थी। तो उनकी मृत्यु जो है वो आज तक मतलब विवादित है कि किस तरह से वो मारे गए, किस तरह से क्या हुआ। लेकिन फिर हम देखते हैं कि 1947 में तो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था, लेकिन उनका काफ़ी बड़ा रोल था एक ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करने का, उनको ये जताने का कि अगर इंडियन से पंगा लोगे तो हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। तो उसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो और लीडर्स हैं उनमें से नाम आता है अपना वीर सावरकर। तो वीर सावरकर जो हैं वो, उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। तो महाराष्ट्र का एक ज़िला है नासिक ज़िला, नासिक ज़िले के भगूर गांव में 28 मई को 1883 के अंदर हुआ था। इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। उसके बाद जो इनकी जो फादर थे वो भी राष्ट्रभक्त थे और मदर थी वो भी। तो उन्होंने 10th की पढ़ाई की, उसके बाद फिर वो बाल गंगाधर तिलक जो खुद एक महाराष्ट्र के इम्पोर्टेंट लीडर थे उनके संपर्क में वो आए। तो उन्होंने अपना गुरु माना, और वो भी क्योंकि गरम दल के थे तो उन्होंने मतलब ये देखा कि वो काफ़ी इंस्पायर थे उनसे, और उन्होंने कानून की पढ़ाई की। इसके लिए वो बम्बई गए। उसके बाद उन्होंने इंग्लैंड में जो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो उन्होंने वहाँ से मतलब लंदन से उनकी जो हायर एजुकेशन है उसकी व्यवस्था कराई, और फिर वो लंदन गए। उसके बाद फिर इंडियन हाउस में अपनी जो देश की गतिविधियाँ हैं उनको उन्होंने देखा। फिर उन्होंने 1857 का जो रिवोल्ट था उसके बारे में भी उन्होंने किताब लिखी। फिर ब्रिटिशर्स जो थे पुलिस थी उन्होंने उनको गिरफ्तार किया। उसके बाद फिर उनको मुंबई की जेल में भेज दिया गया। फिर उसके बाद वो चकमा देकर उनको, जब वो जहाज से लेकर आ रहे थे मुंबई, तो उन्होंने उनको चकमा दिया और वो फ्रांस की सीमा पर पहुंच गए, ठीक है। उसके बाद फ्रांस की सरकार ने फिर जाति की उनके साथ और अंग्रेजों को उनको सौंप दिया। तो हम ये पूरा देख रहे हैं कि किस तरह से मतलब जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं वो पढ़ते थे, फिर मुंबई जा गए वो, फिर उसके बाद लंदन गए, फिर वहाँ से वो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने वहाँ पे भी उनको पकड़ लिया। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे थे कि जो इंडिया के जो लोग हैं जो बहुत एजुकेटेड टाइप के हैं, या फिर जो चाहते हैं कि इंडिया एक आज़ाद देश हो जाए, तो वो नहीं चाह रहे थे कि किसी तरह से ऐसा कोई मूवमेंट इस्टेब्लिश हो। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 26 February 1966 में वीर सावरकर जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जिनको हम देखेंगे। तो राजस्थान के भी कुछ इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, लेकिन अभी बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने बात की है अभी तक तो वो ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस के अंदर किस तरह से बहुत सारे जो हैं इंटरनेशनल मूवमेंट के अंदर मूवमेंट्स हुए, उन मूवमेंट्स के अंदर किस तरह से जो ब्रिटिशर्स हैं उनको मतलब इंडिया ने प्रेशराइज किया, उनके काफ़ी सारे जो डिसीजन थे, जैसे कि हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट की, या फिर हमने देखा कि सैमन कमीशन। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके वजह से ब्रिटिशर्स जो थे उनको एक अपोजिशन ही मिला, और इंडिया के लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो किसी भी लेवल पे इंडिया को सपोर्ट नहीं करने वाले, क्योंकि एनी हाफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को, लेकिन उसके बदले उनको रॉलेट एक्ट मिला जिसके वजह से उनकी इंडिपेंडेंस बिल्कुल ख़त्म कर दी। और उस चक्कर में फिर जो है इंडियंस को ये रियलाइज़ हुआ तो उन्होंने मूवमेंट शुरू किए। उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारे सत्याग्रह, गांधी जी जब आए पिक्चर के अंदर तो उन्होंने पूरा मतलब मूवमेंट जो है वो हिंदू मुस्लिम सबको और अन्य वर्गों को साथ लेकर शुरू किया। तो उन्होंने दो तीन तीन मोमेंट्स में अपनी इम्पोर्टेंट भागीदारी निभाई थी, और उन्हीं की वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया कि हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर लड़ रहे थे। क्योंकि उससे पहले ये रहा था कि इम्पोर्टेंट लीडर्स जो थे वो आपस में ही लड़ पड़ते थे, धर्म दल के गर्म दल के लीडर्स आपस में लड़ाई कर रहे थे, या फिर हिंदू मुस्लिम वर्ग आपस में लड़ लिए थे। लेकिन जैसे ही गांधी जी आए तो उन्होंने एक प्रॉपर लीडरशिप दी और उन्होंने कहा कि अब साथ मिलकर ही लड़ाई लड़ेंगे, तभी हम जो है ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंट लीडर्स की बात की थी कि किस तरह से इम्पॉर्टेंट लीडर्स जैसे कि गांधी जी हो गए, उसके बाद फिर हमने शहीद भगत सिंह की बात की, उनके दोस्तों को किस तरह से फांसी पर सर चढ़ा दिया गया क्योंकि उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार के लीडर्स थे इम्पॉर्टेंट जो हेड था उसको मार दिया था गोली से, और उसके बाद फिर वहाँ की जो पार्लियामेंट थी उसके ऊपर भी उन्होंने बम बरसा दिए थे। तो किस तरह से वो गर्म दल के लोग थे और किस तरह से वो ये चाहते थे कि हम ब्रिटिशर्स को एक तरह से क्रांतिकारी तरीके लेकर अपनाएं और उनको भगा दें इंडिया से। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे जो और इम्पोर्टेंट लीडर है उसके अंदर हमने बात की थी सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने इंडियन आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज का जो है निर्माण किया था, बनाया था वो, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था सैनिकों को एकजुट करने का, और गरम दल वाले उसमें कैटेगरी में ही ये आएंगे। उसके बाद वीर सावरकर की बात की थी हमने, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है अपने हेमू कालानी। तो इन्होंने जो है वो प्रभात फेरियों में जाना शुरू किया था जब महात्मा गांधी अपने आंदोलन कर रहे थे तब। उसके बाद फिर हमने देखा कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में थे तो वो इंडिया में अपना जो ब्रिटेन के जो गुड्स होते थे, वहाँ के जो कपड़े होते थे वो भेजते थे। तो फिर हमने स्वदेशी मूवमेंट में देखा था, जब वो शुरू हुआ था तो उसमें ये बोला था कि हम इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए कपड़ों को नहीं पहनेंगे। और होता ये था कि उस टाइम पीरियड में इंडियंस जो थे वो प्रभात फेरी करते थे, और एक तरह से जब ये पूरा मूवमेंट शुरू हो रखा था तो उसमें ये होता था कि लोग अपने घर से सारे जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए प्रोडक्ट होते थे वो लेके आते थे और उनको जला देते थे। तो उसी तरह से उन्होंने भी लोगों को, जो ये हेमू कालानी थे, इन्होंने भी लोगों को स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करने के लिए कहा, उनको प्रेरित किया गया। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब कि ये देखा कि अगर ब्रिटिशर्स कोई रेलगाड़ी लेके जा रहे हैं जिसके अंदर उनका सामग्री जा रही है या फिर अंग्रेजों के हथियार जा रहे हैं, तो फिर वो उसकी रेल पटरी को जो थे उनको हटा देते थे। तो फिर लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे उनको इस चीज़ का पता लग गया था, तो फिर उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया और फिर उनको फांसी की सजा सुना दी गई। तो मतलब वो ये चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स को किसी भी ना किसी तरीके से परेशान किया जाए, वो जो नॉर्मल फंक्शन करते हैं अपना उनके अंदर एक दखल दिया जाए, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं या फिर उनका जो काम करने का तरीका है उसको डिफ़िकल्ट बनाया जाए। और यही गांधी जी ने किया था, उन्होंने बोला था कि असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में यही था कि तुम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ब्रिटिशर्स के उसको ब्रेक कर दो। वो सॉल्ट बनाने की उन्होंने रूल बनाया था कि सॉल्ट मोनोपोली होगी, नमक हम ही बनाएंगे, तो तुम वो नमक के लॉ को खुद गांधी जी ने जाके तोड़ा था। तो मतलब वो ये चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो है वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो तुम तोड़ो, तुम उनको टैक्स मत दो। तो जो किसान वर्ग था वो भी काफ़ी खुश था कि हमें टैक्स नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि हम असहयोग कर रहे हैं ब्रिटिशर्स का इंडिया में रूल करने के लिए, हम उनको बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे। तो इसी तरह धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें हुई और ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब तो इंडिया में रूल करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि अब पूरी जनता ही उनको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो एट द एंड हुआ ये कि जे सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे इनका एक बहुत बड़ा रोल था इंडिया के इंडिपेंडेंस दिलाने में, क्योंकि इन लोगों ने बहुत लोगों को प्रमोट किया, इन लोगों ने बहुत लोगों को प्रोत्साहित किया कि किस तरह से वो अपना योगदान दे सकते हैं। तो चाहे वो ट्राइबल ग्रुप का नेता हो, चाहे वो किसान वर्ग के लोग हों, या फिर या प्रिंसली स्टेट्स के हों, तो सब ने मिलकर अपना योगदान दिया था इस इंटरनेशनल मूवमेंट में। और ये जो शुरू हुआ था ये 1905 से स्वदेशी से शुरू हुआ, उसके बाद बंगाल का पार्टीशन हम देखेंगे, उसके बाद फिर रॉलेक्ट एक्ट, उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आया, उसके बाद फिर सिविल डिसऑबिडेंस आया, और लास्ट में जो क्विट इंडिया मूवमेंट आया, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद ही ये आ गया था कि अब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया छोड़ेंगे। उसके बाद भी हमें 3-4 साल लग गए थे क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारे कभी राउंड टेबल, कभी कुछ चीज़ें होती रहीं, लेकिन लास्ट में 1947 के अंदर जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, लेकिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के साथ साथ भी इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन भी हुआ, क्योंकि वो जिन्ना की टू नेशन थ्योरी थी जिसमें जिन्ना ने कहा था कि जो इंडियंस हैं और जो वो हिंदूज हैं मुस्लिम्स हैं वो अलग अलग है और एक देश में उनका नहीं गुजारा हो सकता, तो हमें अलग अलग जो है वो डेवलप करना पड़ेगा नेशन। तो इस चक्कर में फिर जब इंडिपेंडेंस हुई तो इंडिया का पार्टीशन भी साथ हुआ उसके।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।